29 अक्टूबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। यूरोपीय संघ का दल 2 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंचा। क्या कहते हैं वहां के राजनेता?
हम चाहते हैं कि उनसे कहें कि आप हिंदुस्तान के वाजपेयी गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर से मिलिए और ये जानने की कोशिश कीजिए वो 3 महीने से क्यों नजर बंद है, जो रिप्रेजेंट करते थे मुल्क को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्यों बंद है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत गंभीर। बात करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी के उदयपुर कनेक्शन की।
तो मैंने उनको कहा कि आप क्यों नहीं उदयपुर आ जाते हैं, वहाँ पर एक संस्था है सेवा मंदिर, वहाँ पर काफी काम चल रहा है और सारा काम गरीबों के साथ है, आदिवासी समाज के साथ है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। ब्रिटेन में समय से पहले आम चुनाव होने के आसार बढ़ गए हैं क्योंकि मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है, यानी ब्रिटेन में दिसंबर में आम चुनाव हो सकते हैं। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि ब्रेग्जिट अब जनवरी के आखिर तक टल गया है, जिससे बिना समझौते के यूरोप से अलग होने का खतरा दूर हो गया है। उधर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जल्द चुनाव करवाने के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए संसद में चौथी कोशिश करेंगे। उनके प्रस्ताव को पास होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। अभी ये साफ नहीं है कि लेबर सांसद 12 दिसंबर को चुनाव की प्रस्तावित तारीख पर सहमत होंगे या वे उससे भी पहले चुनाव चाहेंगे। विपक्षी नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा, EU के सभी 28 सदस्य देशों ने पुष्टि कर दी है कि नो डील के आसार अब नहीं है, तो हम चुनावों में जाएंगे अपने अब तक के सबसे बड़े चुनावी अभियान के साथ, पूरी तरह एकजुट और दृढ़ होकर। मैं देश में हर जगह जाने को लेकर उत्साहित हूं, उम्मीद का एक संदेश लेकर जो इस सरकार में नहीं दिखता। ये थे ब्रिटेन के विपक्षी नेता जेरेमी कॉर्बिन के शब्द। इराकी शहर करबला से आ रही खबरों के मुताबिक बीती रात सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कुछ लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। मेडिकल सूत्रों और चश्मदीदों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं और खबरों में कम से कम 18 लोगों की मौत का दावा किया गया है। स्थानीय गवर्नर और पुलिस प्रमुख ने किसी भी प्रदर्शनकारी की मौत की खबर से इनकार किया है। प्रशासन का कहना है कि गोलियों की आवाजों के बीच भाग रहे प्रदर्शनकारियों के वीडियोज असली नहीं हैं। इराक में प्रदर्शनों का ताजा सिलसिला पिछले हफ्ते शुरू हुआ है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अडिग हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमें एक बदलाव वाली सरकार और राष्ट्रपति चाहिए जो इस संविधान को बदले। बहुत हो गया, बहुत अपमान हो चुका है। मैं एक शिक्षिका हूं, मुझे वेतन मिलता है, मेरे पास घर है, लेकिन नौजवान बेरोजगार हैं, वे कहां जाएंगे। ये थे इराक की एक प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगान सरकार ने शांति वार्ता की शुरुआत से पहले तालिबान की ओर से 1 महीने के संघर्ष विराम की मांग की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्लाह मोहिब ने कहा कि हिंसक हमलों के रुकने से ये साबित होगा कि तालिबान का अपने कमांडरों पर नियंत्रण है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी चरमपंथी समूह को समर्थन न देने की गारंटी न दे, तब तक क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं हो सकती। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक रद्द कर दी थी। अमेरिकी शांति दूत जलमे खलीलजाद तब से क्षेत्र में बातचीत को दोबारा शुरू करने की कोशिशें कर रहे हैं। तालिबान अब तक अफगान सरकार से सीधी बातचीत से इनकार करता रहा है। सीरिया के 2 कथित पूर्व खुफिया अधिकारियों पर सीरिया में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जर्मनी में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनमें से एक अनवर आर पर 2011 से 2012 के बीच एक जेल में जांच इकाई चलाने का आरोप है, जिसमें कम से कम 4,000 लोगों से पूछताछ और उन पर अत्याचार किए गए। उन पर 58 लोगों की हत्या, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के भी आरोप हैं। दोनों अभियुक्तों को फरवरी में जर्मनी से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर पूर्वी सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक पहली बार सरकारी सुरक्षा बलों और तुर्की के समर्थन वाली सेनाओं में संघर्ष हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि लड़ाई में सीरियाई सरकार के 6 सुरक्षा बलों की मौत हो गई है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तुर्की और रूस की ओर से कुर्द लड़ाकों के लिए तय किए गए संघर्ष विराम खत्म होने से ठीक पहले ये संघर्ष हुआ है। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के प्रमुख डेनिस मुलेनबर्ग 737 मैक्स विमान की सुरक्षा चिंताओं से जुड़े सबूत एक जांच समिति को सौंपने वाले हैं। 5 महीने में इस विमान से जुड़े 2 हादसों के संबंध में पहली बार उनसे कुछ सीनेटर्स पूछताछ करेंगे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। आज यूरोपीय संघ का एक दल 2 दिनों के दौरे पर कश्मीर पहुंचा। करीब 3 महीने पहले मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का फैसला किया था, जिसके बाद ये पहला मौका है जब कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल जमीनी हालात का जायजा लेने कश्मीर आया है। हालांकि इस दौरे को अनऑफिशियल करार दिया गया है। इस दौरे पर स्थानीय लोगों और नेताओं का क्या कहना है, बता रहे हैं श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
सख्त तरीन हड़ताल के बीच मंगलवार को यूरोपीय यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के दौरे पर कश्मीर घाटी पहुंचा है। यह प्रतिनिधिमंडल पहले श्रीनगर में सेना के 15वीं कोर गया, जिसके बाद श्रीनगर के ग्रैंड ललित होटल पहुंचा, जहां कई अधिकारियों और डेलीगेशन से यह प्रतिनिधिमंडल मिला। 5 अगस्त को भारत सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल का ये पहला कश्मीर दौरा है। इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे को लेकर कश्मीर के आम लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह की उम्मीदें आम लोगों को इस प्रतिनिधिमंडल से हैं?
लिटरली नथिंग, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशन से कुछ नहीं मिला, तो यूरोपियन नेशन से एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता है। जो हमारा यहाँ का मसला है वो जी आपका यूनाइटेड नेशंस में है। जब वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो यूरोपियन नेशंस क्या करेगी? यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम।
हम चाहते तो यही है कि वो लोगों से मिलें और ये सच कहें कि यहाँ पे सच में बंद है, जैसा कि बाकी गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पे सब कुछ खुला है, स्कूल नॉर्मली चल रहे हैं, वो सब ऐसा है कुछ नहीं। और हमें तो बोला गया था कि जो ये डेलीगेशन है ये लोगों से मिलने आ रही है। हम सुबह से लाल चौक में जो श्रीनगर का कोर है यहाँ घूम रहे हैं, हमें तो नहीं दिखी वो डेलीगेशन।
उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद हसनैन मसूदी का कहना था कि उन्हें प्रतिनिधिमंडल के दौरे से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वो उन लोगों से नहीं मिल रहे हैं जो जेलों में बंद हैं।
हम चाहते हैं कि उनसे कहें कि आप हिंदुस्तान के वाजपेयी गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर से मिलिए और ये जाने की कोशिश है वो 3 महीने से क्यों नजरबंद है, जो रिप्रेजेंट करते थे मुल्क को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्यों बंद है।
वहीं कांग्रेस जम्मू कश्मीर पार्टी अध्यक्ष जी ए मीर का कहना है कि इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे से क्या कुछ हासिल होगा वो देखने वाली बात होगी।
ऐसे में सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर एक आईवाश के लिए इस विजिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मगर जो रियल इसके स्टेक होल्डर है जिनसे बात हो सकती थी वो तो सारे हाउस एरेस्ट डिटेन और आम आदमी आपके नजर में भी टोटली एंग्री है, एनॉयड है।
बीजेपी के नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने मीडिया को बताया कि प्रतिनिधिमंडल कई एक डेलीगेशन से मुलाकात कर रहा है।
जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा वहाँ डेलीगेशन अंदर हुई है और जो कश्मीर की रियलिटी है, जो कश्मीरी लोग चाहते हैं पीस डेवलपमेंट अमन, वहाँ वही बातें हो रही है। और जो एक गलत मैसेज बाहर कोशिश की गई देने की, ऐसा कुछ भी नहीं है।
गौरतलब है कि 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे यानी अनुच्छेद 370 को हटाया है, जिसके बाद से कश्मीर में कर्फ्यू, प्रतिबंध और हड़ताल से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। कश्मीर में बीते 3 महीनों से इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल सेवाएं भी बंद हैं। 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री और कई अलगाववादी नेता या तो गिरफ्तार किए गए हैं या घरों में नजरबंद हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में मंगलवार को पथराव की घटनाओं की भी खबरें सामने आई हैं। गौरतलब है कि कश्मीर पहुंचने से पहले यूरोपीय यूनियन का प्रतिनिधिमंडल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से भी मिला है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
जैसा कि आपने सुना, यूरोपीय संघ के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 2 रोज के गैर सरकारी दौरे पर कश्मीर पहुंचा हुआ है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। कुछ ने इस दौरे का समर्थन जरूर किया है, लेकिन कई विश्लेषकों के अनुसार इन सांसदों को कश्मीर जाने का निमंत्रण देकर भारत सरकार ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इस दौरे से भारत सरकार क्या हासिल करना चाहती है? BBC संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
यूरोप के सांसदों की कश्मीर की यात्रा विवादास्पद हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह दौरा मोदी सरकार के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। वॉशिंगटन में भारतीय मूल के राजनीतिक विश्लेषक अजीत शाही कहते हैं, अब मोदी सरकार पर कश्मीर जाने की मांग करने वाले अमरीकी सांसदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दबाव बढ़ेगा।
आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि अगले 2 से 3 हफ्ते में आपको यहाँ से US कांग्रेस से आपको ये सुनाई पड़ेगा कि जो यहाँ के मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैं वो कह रहे हैं कि अब हम भी कश्मीर जाएंगे। मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको रोक पाना और ये इनके गले का फंदा बन जाएगा।
5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद किसी विदेशी राजनयिकों का घाटी का ये पहला दौरा है। भारत सरकार ने 5 अगस्त से अब तक न केवल भारतीय सांसदों को कश्मीर जाने से रोक रखा है बल्कि विदेशी मीडिया और राजनयिकों को भी घाटी में जाने की इजाज़त नहीं दी है। अब हर वो विदेशी सांसद जो कश्मीर की जमीनी सच जानना चाहता है कश्मीर जाने की मांग कर सकता है या उसे इस दौरे से ये संकेत मिल सकते हैं कि अब कश्मीर जाने में भारत सरकार आड़े नहीं आएगी। भारत ने इस महीने के शुरू में अमरीकी कांग्रेसमैन क्रिस वॉन हॉलन के कश्मीर की यात्रा की मांग को रद्द कर दिया था। 22 अक्टूबर को अमरीकी कांग्रेस की विदेश संबंध समिति के सदस्यों ने वॉशिंगटन में एक मीटिंग के दौरान भारतीय दूत से कश्मीर की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगी थी। अजीत शाही उस बैठक के बारे में कहते हैं,
जो 22 अक्टूबर को एक महीने बाद हाउडी मोदी के जो कांग्रेस में सब कमेटी में हियरिंग हुई उसमें एक के बाद एक 20 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस आए और सबने इतने तल्ख सवाल किए, इतने तीखे सवाल किए भारत सरकार पे कि सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो भारत सरकार की ओर से लोग आए थे वहां, भारत सरकार की ओर से डायरेक्टली कोई नहीं थे, लेकिन हम ये मानते हैं जो कश्मीर में भारत सरकार का पक्ष रख रहे थे लोग, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार से उनके जुड़े होंगे जरूर।
यूरोपीय संघ के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के कश्मीर के दौरे से भारत सरकार चाहती क्या है? भारत की विदेशी नीतियों के लेखक और पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में काम कर चुके रिटायर्ड भारतीय राजनयिक राजीव डोगरा के अनुसार इस दौरे का आयोजन करके भारत सरकार ने आत्मविश्वास जताया है।
मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है और पब्लिक जो है उनकी भी उम्मीदें बढ़ी हैं कि भाई अब जरा सा वो टेरर से हम शायद मुक्ति पा ली है तो मेहमानों की भी हम कदर कर सकते हैं, उनको भी देखने का मौका दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत टाइमली और ठीक इनिशिएटिव है।
भारत सरकार इस यात्रा को कश्मीर में जमीनी स्थिति को सामान्य दिखाने के रूप में प्रस्तुत कर रही है। भारत और यूरोप में यूरोपीय संघ के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के गठन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इन सांसदों में से अधिकतर की पार्टियां खुद उनके देशों में छोटी पार्टियों में शामिल होती हैं और ये कि उनकी विचारधारा दक्षिणपंथी राजनीति की है जिसे मेन स्ट्रीम यूरोप में अहमियत नहीं दी जाती है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा को 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। थोड़ी देर पहले मैंने लाहौर फोन कर BBC संवाददाता उमर दराज नांगियाना से पूछा कि नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में ताजा रिपोर्ट क्या है।
नवाज शरीफ जो है उनके बारे में जो उनके डॉक्टर्स हैं, एक तो उनके अपने जाती डॉक्टर हैं, पर्सनल डॉक्टर हैं डॉक्टर अदनान जो कि काफी अच्छे से उनका इलाज कर रहे हैं, और वो जो अभी डॉक्टर्स का एक पैनल है जो जिसमें कि 10 डॉक्टर्स शामिल हैं उनमें भी वो उनको शामिल किया गया था। तो उन्होंने आज सुबह 1-2 ट्वीट्स किए, फिर हमने उनसे बात भी की, तो उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ जो है उनकी हालत काफी क्रिटिकल है और उनके मुताबिक नवाज शरीफ जो है उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि उनके लो प्लेटलेट्स हैं वो एक प्रॉब्लम है, और उस लो प्लेटलेट्स की वजह से क्योंकि नवाज शरीफ को एंजाइना भी है साथ, तो उनको कुछ उसका पहले एक माइनर सा हार्ट अटैक भी हुआ था, लेकिन लो प्लेटलेट्स की वजह से वो उनका एंजियोग्राम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको मूव करने से उनको खतरा है कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह ना हो। इसी तरह उनको किडनी का भी प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी उनको कॉम्प्लिकेशन है, उनको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें मिलके इसको मेंटेन करना उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और उनके जो जाती डॉक्टर हैं उनसे हमने बात की, डॉक्टर अदनान हैं, तो उनका ये कहना था कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि उनका कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा कि किस वजह से उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो लो हुए हैं।
ये जो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है इस पर नवाज शरीफ की फैमिली सेटिस्फाइड दिखाई देती है, उनका क्या कहना है?
उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें जो मरियम नवाज शरीफ है वो भी ऑलरेडी जेल में थी और जेल से उनको अस्पताल में लाया गया था, तो वो भी हॉस्पिटल में है, खुद भी उनका इलाज जारी है, वो नवाज शरीफ के साथ है और क्योंकि जेल में है इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं की, वो कर नहीं पाई। उसके अलावा शहबाज शरीफ जो है वो बात करते रहे क्योंकि उनके भाई हैं और पंजाब के सबक वजीर आला भी हैं और अभी उनकी जमात के सदर भी हैं, कुछ हवाले से बात करते रहे हैं और उन्होंने नवाज शरीफ की जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर रखी है जिस पर आज समाप्त भी हो रही है इस्लामाबाद में, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी कोई बात नहीं की कि क्या वो यहाँ पर इलाज से मुतमइन है या नहीं है या क्या है, लेकिन जो حکومتی عہدیدار ہیں جو منسٹر ہیں جیسے کہ صحت کی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف نے ان سے بات کی اور نواز شریف جو ہیں وہ مطمئن ہیں اپنے علاج سے اور جو ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں اس سے وہ مطمئن ہیں, لیکن ان کی فیملی کی طرف سے ڈائریکٹلی ابھی تک کوئی ایسا دعویٰ سامنے نہیں آیا جس میں کہ وہ کہیں کہ وہ کیا مطمئن ہیں یا نہیں.
گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کامنٹ یا عمران خان کی طرف سے کوئی کامنٹ اس پورے مسئلے پر؟
جب سے یہ شروع ہوا اس کے بعد ایک دو روز قبل حکومتی عہدیدار ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے, اسپیشلی جو گورنر ہیں پنجاب کے ان کے تھرو یہ بات سامنے آئی کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے ان کو بہترین جو صحت کی سہولیات ہیں وہ دینے کا حکم دیا تھا کہ ان کو وہ پرووائڈ کی جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ مریم نواز جو ہیں اس دوران ان کو ان کے والد کے قریب رکھا جائے, ان کے فادر کے پاس رکھا جائے اور ان کا بھی علاج کیا ہے. تو اسی کے بعد ان کو پھر جیل سے موو کر کے اور ہاسپٹل میں لایا گیا. تو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ خود بہرحال اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اور وہ بات جو ہے وہ زیادہ تر ان اس تنقید کے جواب میں ہوتی ہے کیونکہ نواز شریف کی جماعت کے لوگ ان کے حوالے سے کر کے رہے ہیں. نواز شریف کی جماعت کے لوگ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی اس حالت کی ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان پر جاتی ہے کیونکہ ان کے کہنے پر ان سے سہولیات واپس لی گئی ہیں اور سب کچھ, لیکن اس کے جواب میں عمران خان جو ہیں وہ اس بات کو ڈینائی کر چکے ہیں اور وہ بار بار مختلف جگہوں پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, نہ وہ عدالت ہیں اور نہ ہی وہ دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ہیں, اس لیے ان کی ذمہ داری نہیں بنتی.
یہ تھے لاہور سے بی بی سی سنواداتا عمر دراز نانگیانہ. پاکستان سرکار میں وپکشی پارٹی جمعیت علماء اسلام کے نیتتو میں سرکار کے خلاف آزادی مارچ 31 اکتوبر کو راجدھانی اسلام آباد پہنچنے والا ہے. اس آزادی مارچ کا نیتتو کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جو پارٹی پرمکھ ہیں. پردرشنکاری پردھان منتری عمران خان کے استعفے کی مانگ کر رہے ہیں. پاکستان سرکار نے جمعیت کی شاخہ انصار الاسلام کو چرمپنتھی گٹ کہتے ہوئے اس کی مانیتا رد کرنے کے لیے قدم اٹھائے ہیں. بی بی سی اردو سیوا کے عزیز اللہ خان نے بات کی مولانا فضل الرحمان سے اور پوچھا کہ اس آزادی مارچ سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں.
دیکھیے اس وقت ملک کا ہر طبقہ متاثر ہے اور ہم ایک مطالبہ پیش کر رہے ہیں اور دوسرا اس حکومت کی نااہلی اور غلط کارکردگی پر احتجاج سامنے لا رہے ہیں. مطالبہ تو ایک ہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن دھاندلی زدہ ہے اور بری طرح دھاندلی زدہ ہے اور ہم اس انتخاب کو تسلیم نہیں کرتے, ان کو دوبارہ ملک میں شفاف الیکشن کرانے ہوں گے, ایسے الیکشن جس میں کسی قسم کی کوئی فوجی مداخلت نہیں ہوگی اور اس کے کم اب کوئی اور مطالبہ نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے جی کہ مذہبی طبقہ متاثر ہوا کہ میں نے ناموسی رسالت کے مرتکب لوگوں کو جس انداز کے ساتھ ملک سے باہر بھیجا, اس کو بری کیا, جس طرح انہوں نے قادیانیوں کو یہاں سے رہا بھی کیا اور ٹرمپ کے دربار تک بھی پہنچایا. اب ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا ناموسی رسالت کا مسئلہ ہو, یہاں ایک حساس مسئلہ تو ہے. بجائے اس کے ایسے معاملات میں لوگ جذباتیت کا شکار ہوں, شدت کی طرف جائیں, ہم عوام کی طرف گئے. معیشت آپ کی تباہ ہو گئی ہے, اس معیشت کی وجہ سے آج عام آدمی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. کیا معیشت پاکستان کا یہ حالت تھی جو آج ہو گئی ہے؟ پھر انہوں نے کہا ہم معیشت کو بہتر کریں گے اور خراب کر دیں. پھر انہوں نے کہا ہم 1 کروڑ نوکری نوجوانوں کو دیں گے. تقریباً 45 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں. نوجوان مایوس ہے, اسے اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے. جو ہمارا بڑا سرمایہ دار طبقہ ہے, جو سرمایہ کاری کرتا ہے, وہ پریشان ہے. انہوں نے اپنے یونٹس بند کر دیے ہیں, پیداوار کہاں سے ہوگی, بازار میں لوگ مارکیٹ میں مال کہاں سے لائیں گے؟ جب کم ہوں گی, طلب زیادہ ہوگی تو مہنگائی بڑھے گی اور مہنگائی کا آج عالم یہ ہے کہ جو 10 روپے کوئی چیز تھی آج وہ 90 اور 100 روپے کی ہو گئی. تو اس طریقے سے ملک میں ایسی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں کہ عام آدمی آج ہمیں سپورٹ کر رہا ہے میدان میں نکلنے کے لیے.
صحیح, ایک تو آپ نے یہ کہا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو اسلام آباد جا کے آپ کا آئندہ تو کیا لحمل ہوگا, پھر کیا کریں گے اگر؟
ہاں یہ بات بڑی اہم ہے. ہم وہاں پر بھی نہ ہنگامہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں. پاکستان کا عوام ہے, احتجاج کا حق کورٹ نے تسلیم کیا ہے اس کو, اور کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ریڈ زون میں جلسے نہیں ہونے چاہیے. ہم نے اسی کے احترام میں ریڈ روڈ سے باہر کا خود فیصلہ کیا. ظاہر ہے جب آپ ایک جلسہ کرتے ہیں تو انتظامیہ کا ایک قانونی حق ہے کہ آپ اس کو درخواست بھی دیتے ہیں. ان کے ساتھ ہم بیٹھے اور ان کے ساتھ ہم نے جلسہ گاہ ہے اس کا بھی تعین کیا ہے, اور آگے جب لوگ وہاں پہنچیں گے تو اس جگہ میں وہ سما سکتے ہیں یا نہیں سما سکتے, وہ ہمارا بھی پرابلم ہوگا اور انتظامیہ کا بھی پرابلم ہوگا, مل کر کیسے طے کریں گے, وہاں پہنچ کر طے کریں گے.
لوگ بھی وہاں پہ تھوڑے سے خوفزدہ ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ایک دھرنا آنے کو ہے. پہلے پی ٹی آئی کے دھرنے تھے, پھر اس کے بعد لبیک والوں کے دھرنے شروع ہوئے, اب
نہیں دھرنا نہیں ہے. ہمارا دھرنا نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی دھرنا ہے, نہ ہمارا لاک ڈاؤن ہے. ہمارا ہے آزادی مارچ. تو روڈ کے اوپر لوگ آتے ہیں, روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسی تحریکوں میں پبلک کی زندگی پہ اثر انداز تو ہوتی ہے, عام روزمرہ کی زندگی پر, لیکن پوری قوم اس کو برداشت کرتی ہے. اگر 126 دن تک آپ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ ملک کا نظم و نسق ہی نہیں چل رہا, سیکرٹریٹ ہی بند ہو جاتا ہے سارا, جی لوگ دفتروں میں ہی نہیں آ سکتے, نظام مملکت مکمل رک جاتا ہے, تو ہم تو اب اس ایریا سے باہر ہیں. اب تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ چین کا صدر آ رہا ہے سرمایہ کاری کے لیے اور وہ اس لیے کینسل کر دے کہ آپ کے روڈ وغیرہ معاف کر دیں. اگر ایک دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے, دو دن میں ہو جاتا ہے, ورنہ پھر ہم پلان بی کی طرف جائیں گے, پلان سی کی طرف جائیں گے. اب آپ سمجھیں کہ آزادی مارچ اسلام آباد تک ہے, پھر اس کے بعد اگر مزید اس کو بڑھانے کی ضرورت پڑے گی تو پھر اس کا نام تحریک ہوگا.
یہ تھے پاکستان میں آزادی مارچ کا نیتتو کر رہے فضل الرحمان. یہ بی بی سی ہے, آپ دن بھر سن رہے ہیں ریحان فضل کے ساتھ. ابھیجیت بینرجی, ایستر ڈوفیلو اور مائیکل کریمر کو اس سال اکنامکس کا نوبل پرسکار جس کام کے لیے دیا گیا ہے اس کی شروعات راجستھان کے ادے پور سے ہوئی تھی. ارتھشاستر کے نوبل کا ادے پور سے کیا ہے کنیکشن, سنیے پوری کہانی بی بی سی سنواددتا پردیپ کمار سے.
میں امریکہ گیا ہوا تھا, میرے چھوٹے بھائی ابھیجیت کے ساتھ ایم آئی ٹی میں پڑھاتے تھے, تو وہ ان کے گھر پہ مجھے لے گئے تھے کھانے پہ, اور بات چیت میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ غریبی پہ شوھ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں ادے پور آ جاتے ہیں, وہاں پر ایک سنستھا ہے سیوا مندر, وہاں پر کافی کام چل رہا ہے اور سارا کام غریبوں کے ساتھ ہے, آدیواسی سماج کے ساتھ ہے.
یہ بات تھی 1996 کے شروعاتی مہینے کی. ادے پور کے سماج سیوی اجے مہتا کے بھائی ادے مہتا ایم آئی ٹی میں پروفیسر ہیں. اجے مہتا کے نمنترن کے 6 مہینے کے بعد ابھیجیت بینرجی اپنے سہیوگی مائیکل کریمر کے ساتھ ادے پور آ گئے. تب اجے مہتا ادے پور کے گرامین علاقوں میں کام کرنے والی سنستھا سیوا مندر کے سروے سروا ہوا کرتے تھے. ان کی سنستھا ادے پور کے ان علاقوں میں پرائمری شکشا کے لیے اسکول چلانے کا کام کر رہی تھی جہاں سرکاری ویوستھا نہیں پہنچ پا رہی تھی. انہی اسکولوں پر ابھیجیت بینرجی نے رینڈم کنٹرول ٹریٹمنٹ کا وہ چرچت پریوگ شروع کیا جس کے چلتے انہیں سال 2019 کا نوبل پرسکار ملا ہے. سیوا مندر کے اس دور میں مہا سچیو رہے ہری رام بھاٹی بتاتے ہیں.
ہمیں لگ رہا تھا کہ یدی ہم ایک مہیلا ٹیچر لگا دیتے ہیں تو شاید لڑکیوں کی سنکھیا میں بھی بڑھوتری ہوگی, اور اس طرح سے دو ٹیچر کا کانسیپٹ ہم نے اس سمے سوچ رہے تھے. پر ہم نیتی میں تو لائے تھے ہم اور لکھا بھی تھا, تب مائیکل صاحب نے اور ابھیجیت نے کہا کہ اگر یہ نہیں اتارا ہے تو آپ ہمارے ساتھ اتاریے.
سیوا مندر اپنے اسکولوں میں ٹیچروں کی سنکھیا 1 سے بڑھا کر 2 کرنا چاہتا تھا. ایسا کرنا فائدے مند ہوگا یا نہیں, اسی پر ابھیجیت بینرجی نے اپنا پہلا پریوگ کیا اور ثابت کیا کہ 2 ٹیچروں سے حالات بہتر نہیں ہوں گے. اس بات کو سمجھانے کے لیے ابھیجیت بینرجی, ایستر ڈوفیلو اور مائیکل کریمر نے قریب 47 اسکولوں پر 1.5 سال تک پریوگ کیا. یہاں سے شروع ہوا سلسلہ آگے بڑھا اور سیوا مندر کے ساتھ انہوں نے پورن ٹیکاکرن ابھیان پر کام شروع کیا. ان کے اس کام کا ذکر نوبل پرسکار سمیتی نے بھی کیا ہے. تب سیوا مندر کی کمان نیلیما کھیتان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی. وہ اس پریوگ کے بارے میں بتاتی ہیں.
کنٹرول کے گاؤں چنے گئے تھے 60, اور 60 ٹریٹمنٹ کے گاؤں تھے, اور ٹریٹمنٹ کے گاؤں میں 30 گاؤں میں صرف سپلائی سائڈ کا انٹروینشن تھا, صرف کیمپ ہوتا تھا ریگولر, اور 30 میں سپلائی بھی اور دال کا بھی تھا, دونوں تھا. تو جب نتیجے نکل کر کے آئے تو جو بیس لائن 2%, 1.5 سال کے بعد میں جو کنٹرول ولیجز تھے وہاں پہ وہ 2 بڑھ کر کے 6.5 ہو گیا تھا. جہاں پہ ہم نے صرف سپلائی ریگولر انشور کی تھی وہاں پہ 16.5 کے لگ بھگ فل امیونائزیشن پہنچ گیا. اس سے ادھک چونکانے والا نتیجہ تھا کہ جہاں پہ سپلائی کے ساتھ میں دال کا کیا جو ڈیمانڈ سائڈ کو جنریٹ کرنے کے لیے کیا, وہاں پہ 38% کے اوپر فل امیونائزیشن ریٹ एक डेढ़ साल के अंदर पहुंच गई।
टीकाकरण को कामयाब बनाने के इस प्रयोग में अभिजीत बैनर्जी की टीम ने टीका लगवाने वाले परिवार को 1 किलोग्राम मूंग की दाल देना शुरू किया और इस इंसेंटिव से नतीजे बेहद कामयाब रहे।
इतनी बहस हुई, पूरा कैसे देंगे, अपन उसको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टेम्पटेशन दे रहे हैं, तो फिर हुआ अच्छा उससे थोड़ा कम देंगे, तो 1 किलो दाल का चार, वो मुझे याद है हमारी एक कॉलीग थी प्रियंका, दाल का आइडिया उनका था।
सेवा मंदिर का दावा है कि 2004-05 से शुरू हुए इस अभियान के तहत करीब 20,000 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफोलो, माइकल क्रेमर के इस प्रयोग से उदयपुर के जनजातीय और आदिवासी इलाकों में बच्चों की असमय मौत का सिलसिला काफी हद तक थम गया।
मौत के डाल देते, बढ़िया वाले डाल देते और मैं टीका पूरा हो जाता है तो दो ठेली डाल देते, 2 किला, एक कटोरी देते, एक थाली देते,
एक गिलास।
तो दाल क्यों देते थे ये लोग, कुछ पता चला?
दाल तो बच्चों को खुराक बनने
और मम्मी उनके कमजोरी ताकत बढ़े।
अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफोलो और माइकल क्रेमर के इस काम की चर्चा उस दौर में उदयपुर से बाहर नहीं पहुंची। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद उनके इस काम की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन अगर उस वक्त सेवा मंदिर ने उनके इस काम के बारे में राज्य प्रशासन या केंद्र सरकार के संबंधित महकमों को ठीक जानकारी दी होती तो निश्चित तौर पर इसका फायदा एक बड़े तबके तक पहुँच पाता। प्रदीप कुमार, BBC उदयपुर।
और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह और आज सबसे पहले बात फुटबॉल की। AFC गोवा ने इंडियन सुपर लीग के 6th सीजन के अपने दूसरे मुकाबले में मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु AFC को 1-1 की बराबरी पर रोक लिया। सोमवार को खेले गए इस मैच में फेरान कोरोमेनास द्वारा इंजरी टाइम में पेनल्टी पर किए गए गोल की मदद से गोवा की टीम हार को टालने में कामयाब रही। कैसा रहा ये मुकाबला, बता रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव।
देखिए, ये मैच कोरो के नाम रहा। फेरान कोरोमेनास जो हैं, उन्होंने डाइंग मिनट्स में अपनी साइड की तरफ से, एफसी गोवा की तरफ से गोल करके एक ड्रॉ किया और ये ड्रॉ बेंगलोर के लिए काफी मुश्किल पड़ा क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस बैंगलोर ये सोच रहे थे कि हम ये मैच जीत जाएंगे। पहले भी एक ड्रॉ उनके रह चुका है तो ये काफी बड़ी कहिए कि एक राहत मिली होस्ट के लिए, क्योंकि जो अंतिम क्षणों में रेफरी ने एक पेनल्टी अवार्ड की थी स्टॉपेज टाइम जो होता है उसमें, और उसमें कोरोमेनास ने कन्वर्ट कर दी पेनल्टी को।
ये थे वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। वहीं उदांता सिंह ने 62वें मिनट में किए गए गोल की मदद से मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु AFC ने बढ़त हासिल की थी और उसकी जीत लगभग पक्की नजर आ रही थी, लेकिन कुरुनियन द्वारा 92वें मिनट में कोरो को पेनल्टी एरिया में गिराए जाने के बाद रेफरी ने बेंगलुरु के खिलाफ पेनल्टी दिया और कोरो ने उसे गोल में बदलकर अपनी टीम को सीजन की पहली हार से बचा लिया। और अब बात स्क्वाश की करते हैं। भारत की स्क्वाश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा प्री क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त नूर इल शेरबिनी से सीधे गेम में हारने के कारण से CIB PSA विश्व महिला स्क्वाश चैंपियनशिप से बाहर हो गई हैं। विश्व में 12वें नंबर की जोशना को सोमवार रात को खेले गए मैच में 5-11, 3-11, 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और अब सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेनाओं ने उस शख्स को मार दिया है जो अबू बकर अल बगदादी के बाद इस्लामिक स्टेट का नेता हो सकता था। ट्रंप ने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। ब्रिटेन में समय से पहले आम चुनाव होने के आसार बढ़ गए हैं क्योंकि मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है, यानी ब्रिटेन में दिसंबर में आम चुनाव हो सकते हैं। इराकी शहर करबला से आ रही खबरों के मुताबिक बीती रात सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कुछ लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। मेडिकल सूत्रों और चश्मदीदों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं और खबरों में कम से कम 18 लोगों की मौत का दावा किया गया है। अफगान सरकार ने शांति वार्ता की शुरुआत से पहले तालिबान की ओर से 1 महीने के संघर्ष विराम की मांग की है। सीरिया के 2 कथित पूर्व खुफिया अधिकारियों पर सीरिया में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जर्मनी में मुकदमा दर्ज किया गया है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। रिहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।